पृष्ठ संख्या 78। 1894 से 95 का चीन जापान युद्ध, अध्याय 6 का शेष भाग। 17 अप्रैल 1895 को शिमोनोसेकी की संपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसकी मुख्य शर्तें निम्नलिखित थी। पहला चीन ने कोरिया को संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की। दूसरा, लियाओतुंग फॉर्मोजा यानी ताइवान तथा पैस्केडोर जापान को प्राप्त हुए। तीसरा, चीन ने हर्जाने की राशि 20 करोड़ तायल जापान को देनी स्वीकार की। वेई हाएवेई भी जापान के पास तब तक रहना निश्चित हुआ जब तक यह राशि जापान को प्राप्त न हो। इसी दौरान एक वाणिज्य संबंधी संधि करने का भी फैसला किया गया। चौथा, शाआनशी चुंगकिंग सुचोऊ तथा हांगचोऊ बंदरगाहों को व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रयोग के लिए खोल दिया गया। पांचवा, जापानियों को चीन में फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति दी गई। 8 मई 1895 को कुछ संशोधनों के साथ संधि कर दी गई। हालांकि आरंभ में जापान जैसे छोटे देश द्वारा चीन को पराजित करना नामुमकिन लगता था, लेकिन चीन की अपनी समस्याएं थी जिनके कारण उसकी पराजय हुई। सैनिकों की कमी न होते हुए भी चीन की सेना की व्यवस्था प्राचीन ही थी। संख्या में बहुत अधिक होने के बावजूद वह जापान की आधुनिक सेना के सामने टिक न सके। जापान की सेना का प्रशिक्षण तथा हथियार सभी आधुनिक थे। इसके विपरीत चीन ने आधुनिक प्रशिक्षण तथा हथियारों पर जोर नहीं दिया। जापानी जहाज़ों के मुकाबले चीनी जहाज़ों की गति भी बहुत कम थी। जापानी जहाज़ों का अधिकतम भार 4000 टन था, जबकि चीनी जहाज 7000 टन से भारी थे। जापानी सेना स्थल तथा समुद्र दोनों में आधुनिक तरीकों से युद्ध में निपुण थे। चीनी कप्तान लियू, जिन्होंने ब्रिटेन में प्रशिक्षण प्राप्त किया था, में नेतृत्व का गुण नहीं था। युद्ध के दौरान उन्होंने केवल अस्त्र व्यवस्था ही पैदा की। इसके साथ साथ चीन के दक्षिणी प्रांत युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए। उनका कहना था कि यह ली हुंग चांग अथवा उत्तरी चीन का युद्ध था। इस युद्ध में चीन के आम नागरिक को प्रभावित नहीं किया गया, बल्कि इसे केवल ली की पेयांग टुकड़ी तथा हुआए सेना ने ही लड़ा था। इसका परिणाम यह हुआ कि यह युद्ध जापान तथा ली के समर्थकों के बीच तक ही सीमित रहा। ली को केवल युद्ध के मामले में ही निर्णय लेने का अधिकार था और वह कोरिया संबंधी अन्य निर्णय नहीं ले सकते थे। इस प्रकार आदेश जारी करने में एकजुटता नहीं थी। यहाँ तक कि सैनिक निर्णय भी ली गई कि पेयांग टुकड़ी तथा हुआए सेना के बाहर नहीं चलते थे। चीन की पराजय का एक अन्य कारण भ्रष्टाचार भी था। छिंग दरबार तथा पेयांग टुकड़ी में काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार फैला हुआ था। इस कारण आरंभ से ही चीनी प्रयास असफल होते रहे। उधर सम्राज्ञी तशशी ने नौसेना की राशि का भारी हिस्सा ग्रीष्म महल बनवाने में लगा दिया। हथियारों के लिए मिली राशि का बड़ा भाग ली तथा उनके नीचे के अफसरों की जेबों में पहुंच गया। ब्रिटिश सलाहकारों को दो नए तेज गति से चलने वाले जहाज़ों को खरीदने की सलाह पर भी ध्यान नहीं दिया गया। वही दो जहाज जापान ने खरीद लिए, जो उसकी सफलता में काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध हुए। दूसरी ओर ली अपने निचले अधिकारियों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर नहीं करते थे, बल्कि उनकी वफादारी प्रथा तथा पहचान को ध्यान में रखकर करते थे। ली को भी अपनी सेना की कमजोरियां पता थी, इसलिए वह युद्ध को काफ़ी समय तक टालते रहे। ली ने काफ़ी मूल्यवान समय समझौतों में ही गंवा दिया। उन्होंने सैनिक तैयारियों में भी समय नहीं लगाया। चीन की पराजय से उसके स्वस्थ सुदृढ़ीकरण आंदोलन की कमजोरियां भी खुले रूप में सामने आई। कुछ हद तक हर क्षेत्र में सुधार हुए थे, किंतु पूर्ण आधुनिकीकरण से चीन अभी कोसों दूर था। लियाओतुंग प्रायद्वीप के जापान के हाथ में चले जाने से मंचूरिया को भी खतरा पैदा हो गया था। चीन के शासक वहीं के थे। अब जापानी सेना पेचिंग के काफी पास पहुंच गई थी। इसका पश्चिमी देशों ने भी काफी विरोध किया। फ्रांस, जर्मनी तथा रूस ने मिलकर जापान से लियाओतुंग चीन को लौटा देने की मांग की। जापान 30 करोड़ तायल के बदले में लियाओतुंग चीन को वापस लौटाने के लिए सहमत हो गया। 25 मई 1895 को फॉर्मोजा ने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। अक्टूबर 1895 में चीन की मदद से जापान को फिर से ताइवान प्राप्त करने में सफलता मिली। इस युद्ध से सुदूर पूर्व की राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। चीन और जापान की स्थिति विपरीत हो गई थी। अब चीन के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई थी। इसके विपरीत जापान, रूस, फ्रांस, जर्मनी तथा ब्रिटेन के लिए, जिनकी चीन में दिलचस्पी थी, शानदार पड़ाव आरंभ हुआ। इस युद्ध से चीन की कमजोरियां खुले रूप में सबके सामने आ गई थी। धीरे धीरे विदेशी शक्तियों ने चीन के अनेकों क्षेत्रों पर आधिपत्य कर लिया। चीन को लेकर यह शक्तियां परस्पर संघर्ष करने लगी थी। सभी देश अपने प्रभाव क्षेत्र स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते थे। चीन को इन विदेशी शक्तियों ने तरबूज की भांति विभाजित कर लिया था। अपने अपने क्षेत्रों में इन विदेशियों ने रेल लाइनें बिछाई, खाने और फैक्ट्रियां खोली, बैंक तथा अन्य सेवाएं शुरू की। इस प्रकार साम्राज्यवाद ने चीन को एक अर्ध उपनिवेश बना दिया। अब चीन एक स्वतंत्र देश नहीं रह गया था। चीन को पश्चिमी देशों के उच्च दर्जे के शोषण का शिकार बनना पड़ा। चीन पर जापान की विजय ने विदेशी शक्तियों को अपने उद्योगों तथा कारखानों के मामले में स्वयं हस्तक्षेप करने का मौका दिया, क्योंकि चीन अब उन पर नियंत्रण रखने में असमर्थ था। एक प्रकार से यह रूस, फ्रांस तथा जर्मनी के लिए चीन को लियाओतुंग प्रायद्वीप वापस दिलवाने का पुरस्कार था। यह युद्ध सभी साम्राज्यवादी देशों के लिए वरदान साबित हुए। इससे उन्हें सुनहरे अवसर मिले। दूसरी ओर चीन लाचार रूप से इन सभी गतिविधियों को देख रहा था। विदेशी उसके कच्चे माल तथा सामान का बेधड़क प्रयोग कर रहे थे। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन के लोगों में विचारों तथा अभिलाषाओं को लेकर मतभेद बढ़ने लगा। चीन में उदारवादी तथा उग्रवादी दल उभर कर सामने आए। उदारवादी पीटर महान तथा सम्राट मेजी के रास्ते पर चलकर सुधारों को आगे बढ़ाना चाहते थे। उग्रवादी छिंग सरकार का तख्ता पलटकर एक गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। इस युद्ध ने छिंग राजवंश का पतन तथा 1911 की क्रांति को निकट ला दिया। जापान के लिए इस युद्ध को सबसे जापान के लिए इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि उस पर पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा थोपी गई असमान संधियां रद्द कर दी गई। भौमिक तथा अन्य विशेष अधिकार जो उन शक्तियों को मिले थे, उन्हें छोड़ने पड़े। अब जापान सीमा शुल्क किसी अन्य देश के हस्तक्षेप के बिना ही लगा सकता था। जापानी साम्राज्यवाद ने सुदूर पूर्व के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। जापान ने अपना नाम विश्व के प्रमुख साम्राज्यवादी देशों में लिख लिया। शिमोनोसेकी की संधि के बाद जापान ने व्यापार तथा वाणिज्य को प्रोत्साहन न देकर भूमि प्राप्ति तथा उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। जापान एशिया का प्रथम साम्राज्यवादी देश बना। 1895 के पश्चात तेइकोकु शुगी अर्थात साम्राज्यवाद जैसे शब्दों का प्रयोग प्रायः किया जाने लगा। जैसा कि अकीरा इरिये ने कहा है, अक्सर इसका प्रयोग देश के व्यवहार के स्पष्टीकरण के रूप में किया गया था। इट वॉज यूजुअली एम्प्लॉयड टू जस्टिफाई द नेशंस बिहेवियर। यह दलील दी जाने लगी कि सुदृढ़ राष्ट्र के लिए भौमिक साम्राज्यवाद आवश्यक था, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो दूसरे देश वहां अपना अधिकार कर लेंगे। यदि एक और कुछ जापानी विचारकों ने इस विजय को जापान द्वारा अपने पुराने एशियाई सभ्यता के नकारात्मक पहलुओं का परित्याग करने का एक अवसर माना, तो दूसरी ओर कुछ विचारकों ने इसी स्थिति को पश्चिमी हस्तक्षेप के खिलाफ चीन तथा जापान के एकीकरण की ओर एक कदम माना। कुछ पश्चिमी शक्तियों को भी भय था कि चीनी लोग तथा साधन जापानी सैन्य तथा औद्योगिक शक्ति के साथ मिलकर दुनिया का बखूबी मुकाबला कर सकते हैं, किंतु जापान का मंचूरियाई साम्राज्यवाद त्रिपक्षीय हस्तक्षेप से समाप्त हो गया। जापान द्वारा लियाओतुंग प्रायद्वीप तथा पोर्ट आर्थर चीन को लौटाना इस युद्ध के बाद की एक अजीब घटना थी। इससे जापानी लोगों में कड़वाहट भड़ गई तथा जापान को एक तरह से साम्राज्यवादी राजनीति में और भी जोर शोर से भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिला। जापानी लोग अपने आप को और अधिक सुदृढ़ करके भविष्य में इसका बदला लेना चाहते थे। जापान ने सैनिक शक्ति को अधिक मजबूत करने के लिए उसमें 6 नई टुकड़ियां शामिल की, जिससे उनकी कुल संख्या 13 हो गई। उन्होंने स्थल सेना की शक्ति को भी दुगुना कर लिया। 1898 में घुड़सवारों तथा तोपखाने को दो अलग-अलग हिस्सों में आयोजित किया गया। इसके साथ साथ हथियारों को भी आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया। विशेषतया सैनिकों को आधुनिक राइफलें दी गई, इन्हें जापान में बनाने की भी व्यवस्था की गई। नौसेना में नए नए उपकरणों को शामिल किया गया। नौसेना हेतु 4 युद्धपोत, 16 बड़े जंगी जहाज, 23 छोटे जहाज तथा 60 से अधिक बड़ी नावें खरीदी गई। अब बड़े जंगी जहाजों की संख्या 76 हो गई। सैन्य व्यय को 1893 के 1.5 करोड़ येन से 1896 में 5.3 करोड़ कर दिया गया। भविष्य में बड़े बड़े उद्योगों पर पैसा खर्च करने का निश्चय किया गया, वह भी विशेष तौर से सैन्य महत्व रखने वाले उद्योगों पर। जहाजों तथा जहाज बनाने वाले कारखानों पर काफी ध्यान दिया गया। इससे देश को सुदृढ़ बनाने में काफी मदद मिली। यह सब सैन्य सुधार इस चीन जापान युद्ध का परिणाम माना जा सकता है, जिससे जापान एक रूढ़िवादी देश से आधुनिक साम्राज्यवादी देश बन गया। जापान की औद्योगिक क्रांति भी इस युद्ध का परिणाम कहा जा सकती है। कोरिया तथा चीन के नए बाजारों ने जापान को अधिक कपड़ा बनाने, लोहे तथा स्टील का सामान बनाने, जहाज निर्माण तथा अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया। इस युद्ध के पश्चात जापान ने निश्चित किया कि वह किस प्रकार आने वाले अर्धशतक में बाह्य तथा आंतरिक समस्याओं का सामना करेगा। इस युद्ध ने जापान को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश दिलवाया, जिसका चरमोत्कर्ष 1941 से 45 का घातक युद्ध था। इस युद्ध के पश्चात जापान की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति भी हुई। लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हुई। इसके साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं, मजदूर आंदोलन तथा अन्य कई मुसीबतों का भी जापान को सामना करना पड़ा।